स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 27 अप्रैल दिन शनिवार, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने बीबीसी से कहा हमले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
I did not know and I have said so. If I knew certainly then I have to take responsibility.
वाराणसी से मोदी को चुनौती देने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव से खास बातचीत।
हम काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से जो नकली चौकीदार है उसे भगाने के लिए बनारस हमने चला, जो देश में नकली चौकीदार बन के बैठे हैं जिन्होंने फौज के ऊपर पूरी राजनीति की।
विवेचना में आज बात पूर्व एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह की।
जवान ने बुलाया अर्जन सिंह को, थिंग्स आर लुकिंग वेरी ग्रिम, व्हाट कैन यू डू, ही सेड सर गिव मी द गो अहेड।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बीबीसी से कहा है कि रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों से जुड़ी खुफिया चेतावनी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। विक्रमसिंघे ने कहा कि देश में किसी भी तरह के खतरे की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। रविवार को चर्च और होटलों को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमलों में 250 से अधिक लोग मारे गए थे। श्रीलंका की सरकार खुद इसे सुरक्षा और इंटेलिजेंस में भारी चूक मान रही है। इन हमलों के बाद श्रीलंका के पुलिस प्रमुख और रक्षा सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने यह कहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि इस सुरक्षा और इंटेलिजेंस चूक के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि को रद्द कर रहे हैं। 2013 में अमल में आया ये समझौता दुनिया भर में परंपरागत हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करता है। साल 2009 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका ने इस संधि को मंजूर किया था, हालांकि अमेरिकी संसद ने इसे अपनी मंजूरी कभी नहीं दी। ट्रंप ने कहा,
This treaty threatened your subjugate.
ये संधि एक तरह का खतरा है, आपके अधिकार, संवैधानिक हक और अंतर्राष्ट्रीय नियम, प्रतिबंध और शर्तें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरे शासन में हम अमरीकी संप्रभुता को किसी को नहीं सौंपेंगे। हम किसी भी विदेशी नौकरशाह को आपकी स्वाधीनता में दखल नहीं देने देंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल इसराइली सीमा पर हुई हिंसक झड़पों में कम 60 फलस्तीनी घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई लोग इसराइली सुरक्षा बलों की गोलीबारी में घायल हुए हैं। इसराइली सुरक्षा बलों के एक प्रवक्ता ने कहा कि करीब 7,000 लोग कड़ी सुरक्षा वाली सीमा पर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थर और विस्फोटक फेंके। इसराइली सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में गोलियाँ चलाई। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की अपील की है। एजेंसी का कहना है कि 2 साल पहले अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेने वाले अधिकतर रोहिंग्या अब भी बांग्लादेश में हैं और उनकी मदद के लिए अधिक और तेजी से काम किए जाने की ज़रूरत है। एजेंसी के समन्वयक मार्क लोकोक ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,
1.2 million people by raising money to support.
हम धन जुटाकर 12 लाख लोगों की मदद करना चाहते हैं। इनमें से 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं और 3 लाख इस हिस्से में रह रहे गरीब बांग्लादेशी। पिछले साल हमने 10 लाख डॉलर की रकम जुटाई थी और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोग शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आएं। ये थे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के समन्वयक मार्क लोकोक। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री जॉर्ज अरेजा और एक वरिष्ठ जज पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह वेनेजुएला के भ्रष्ट अधिकारियों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सरकार के लिए कूटनीति करने वालों को निशाना बनाता रहेगा। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क का अमरीकी फाइनेंशियल रेगुलेटर से समझौता हो गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 27 तारीख और दिन है शनिवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीलंका से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा है कि रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए धमाके के बारे में किसी भी खुफिया सुराग की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि चूंकि इस मामले में वो लूप में थे ही नहीं, लिहाजा नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने माना है कि रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए आत्मघाती हमले सरकारी तंत्र की भारी चूक का नतीजा थे। बीबीसी को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें इस संभावित खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया था, साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे की मांग को भी ठुकरा दिया। विक्रमसिंघे ने कहा,
I did not know and I have said so. If I knew, certainly, then I have to take responsibility.
मैंने कह दिया है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेता। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकारी मशीनरी से भारी चूक हुई है और हमें इसे देखना होगा। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता और मैंने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो मैं तुरंत अपना इस्तीफा दे देता, लेकिन आप क्या करोगे जब आपको लूप में ही न रखा जाए। ये थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के शब्द। श्रीलंका की दो सबसे ताकतवर शख्सियतों राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के बीच पिछले साल अक्टूबर से ही तकरार चल रही है और दोनों के संबंध तनावपूर्ण हैं। सिरिसेना ने तब विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। बाद में दिसंबर में श्रीलंका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ही विक्रमसिंघे वापस पीएम का पद पा सके थे। कोलंबो के आर्कबिशप मालकम रंजीत ने कहा है कि अगर श्रीलंका प्रशासन को ईस्टर पर चरमपंथी हमलों का अंदेशा था तो उन्हें इसकी जानकारी चर्च को देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा,
आई थिंक वेरी मच दैट दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस एंड बट ड्यू टू सम रीजन वी नेवर न्यू अबाउट इट।
मैं समझता हूं कि उन्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए था। ये उन अधिकारियों की सरासर लापरवाही है जिन्हें इसकी जानकारी थी और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मसलन रक्षा सचिव, जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि ये मामला इतना गंभीर होगा। लेकिन मेरा कहना है कि भले ही उन्हें गंभीर परिणामों की आशंका नहीं थी, फिर भी हमें तो सूचना देनी ही चाहिए थी। ये थे कोलंबो के आर्कबिशप के शब्द। इस बीच श्रीलंका के मुसलमानों को डर है कि ईस्टर पर हुए हमलों के बाद उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कई मुस्लिम संगठनों ने लोगों से जुमे की नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की थी। एक मुस्लिम धर्मगुरु मुनीर अहमद ने बताया, यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कई गर्भवती महिलाएं हैं। वे बेहद डरी हुई हैं क्योंकि कल उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि स्थानीय गांवों से कुछ लोग आए और हमला करने का प्रयास किया। हालांकि वहां पुलिस मौजूद थी और किसी को कुछ नहीं हुआ। ये थे एक मुस्लिम धर्मगुरु मुनीर अहमद के शब्द। ईस्टर पर हुए धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। श्रीलंका सरकार का कहना है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के करीब 130 संदिग्ध श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनमें से आधे से अधिक अब भी लापता हैं। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बरकरार हैं।
और अब बात लोकसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से नामांकन किया। नामांकन भरने के दौरान भाजपा सहित एनडीए गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता बनारस में मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ओडिशा में लोगों को संबोधित किया तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी मार्लेना ने नए नए भाजपा नेता बने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पर आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। कल दिन भर क्या क्या चुनावी हलचल रही, सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से।
कल चुनावी हलचल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से नामांकन भरने के साथ हुई। इस दौरान भाजपा ने अपने गठबंधन एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी किया। मोदी के नामांकन भरने के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार, लोजपा नेता रामविलास पासवान और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी वाराणसी पहुंचे थे। नामांकन भरने के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने जबलपुर में रैली को संबोधित किया। मोदी ने लोगों से कांग्रेस को वोट ना करने की अपील की।
कितना ही मोदी विरोधी होगा, लेकिन वो ऐसी गलती करेगा क्या? इनके हाथ में कुछ देगा क्या? और ये लूट कैसे की है? किसी अमीर की जेब से नहीं मारा है, किसी धनवान से रिश्वत नहीं ली है। इन्होंने जो किया है ना, मेरी माताएं बहने, मध्य प्रदेश की माताएं बहने, इनको जीवन भर कभी वोट मत देना, जीवन भर। ये चुनाव नहीं, जीवन भर।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में रैली को संबोधित किया और लोगों से कुछ नाम बुलवाए। वो नाम किन लोगों के थे, आप भी सुनिए।
और चौकीदार, आपके जेब में से पैसा निकाल कर अनिल भाई, अच्छा नाम आप जानते हो, देखो सब नाम जिन्होंने आपसे पैसा चोरी किया सबके नाम आप जानते हो, बड़ी सुंदर बात है। देखो मैं बताता हूं, अनिल, मेहुल, नीरव, ललित, विजय, देखिए सब नाम आप जानते हो। इन चोरों ने हमें, अच्छा आखिरी नाम भूल गया, नरेंद्र, सब नाम जानते हो, लिस्ट है आपके पास भैया। नीरव मोदी ने 35,000 करोड़ लिए, मेहुल चौकसी, विजय मालिया और कंट्रोलर चौकीदार ने पूरों को पूरों को दिया, इसलिए हम आपको न्याय योजना देने जा रहे हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव इस बार अभी तक चुप्पी साधे बैठे थे, लेकिन कल उन्होंने राजनीति पर अपने विचार रखे। बाबा रामदेव बिहार की राजधानी पटना में थे। उन्होंने बताया कि देश की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए।
नीतियों के साथ नियत भी अच्छी होनी चाहिए, उस व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उसमें चरित्र की पवित्रता भी होनी चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि नीतियों से देश चलता है।
एक तरफ बाबा रामदेव नेतृत्व क्षमता और नीतियों की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार के ही समस्तीपुर में गठबंधन की रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा कि वे राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।
मोदी जी के कथनी और कमी में अंतर है, लेकिन राहुल जी ने जो वादा किया था 3 राज्यों में जीतने के बाद 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 2 दिन में ही किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे, इसलिए देश को झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बताइए, किसान रेंगते रेंगते प्रधानमंत्री के पास गया मिलने अपनी समस्या को सुना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने डंडे चलवाए। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था मोदी जी के पास कि किसान से मिल सके, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास जरूर समय था कि प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाकर के शिरकत करें। तो हमें प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो अमीरों का हो, कुछ घराने का हो, हमें प्रधानमंत्री चाहिए राहुल जी जैसा चाहिए जो गरीब की बात करता हो।
इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने कल बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर का नाम 2 अलग-अलग विधानसभाओं में वोटर के तौर पर दर्ज है। वहीं गौतम गंभीर की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ये थे नवीन नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बनारस से इस बार कांग्रेस और गठबंधन के अलावा एक और प्रत्याशी चुनौती दे रहे हैं। इस प्रत्याशी का नाम है तेज बहादुर यादव। बीएसएफ के इस जवान का नाम आपको याद होगा, जब साल 2017 में तेज बहादुर यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर फौज में मिलने वाले खाने की शिकायत की थी। उसके बाद तेज बहादुर यादव को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब वे बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर तेज बहादुर ने चुनाव लड़ने के लिए बनारस को ही क्यों चुना और कैसे वो मोदी को चुनौती दे सकेंगे, यही सवाल पूछा बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने।
हम काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से जो नकली चौकीदार है उसे भगाने के लिए बनारस हमने चुना, जो देश में आज नकली चौकीदार बन के बैठे हैं, जिन्होंने फौज के ऊपर पूरी राजनीति की। आज आप देख रहे हो कि हमारी फौज की जो साख इन्होंने कैसे मिट्टी में मिला दिया। आज विदेशों तक हमारी फौज का नाम बदनाम हो रहा है, सभी जवानों का बहुत ज़्यादा मोरल डाउन है। जैसे कल आपने देखा, परसों जो हमारे रोड शो में देश के कोने कोने से सब जवान हैं, उनको एक ही गुस्सा है कि ये चीज़ें जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आज कोई पहली बार नहीं है। फौज हरदम अपनी करती आई है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति जो इन्होंने की, इसलिए हमने निश्चय लिया है अगर भी देश को बचाना है आज तक हम सीमाओं की रक्षा की, अब हमें चुनाव लड़के संसद में जब तक हमारे जवान साथी नहीं जाएंगे जब तक ये देश नहीं बच पाएगा।
अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि अगर आंख दिखाने के काबिल कोई हुआ है अभी तो वो भारत दूसरे देशों को, पड़ोसी देशों को, या जो भारत पर गलत नज़र डालते हैं तो वो प्रधानमंत्री के डर की वजह से दूसरे कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा दब रहे हैं भारत के सामने।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा होता तो फिर पुलवामा हमला कैसे हो गया? इससे बड़ा, इतना बड़ा हमला आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर दी इतना डर था, इनका खौफ था, तो पुलवामा हमला क्यों नहीं रोक पाए ये लोग? अगर दी ऐसा है या तो फिर इनकी साजिश है, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति के चक्कर में इन्होंने ही करवाया हो? अगर
ये आरोप है इसका तो कोई अभी तक कोई इस पे
नहीं, उसका मैं ये कह रहा हूँ ना, पुष्टि नहीं हुई तो उसकी जाँच क्यों नहीं कराते ये लोग? इनका काम है, जब वहाँ के गवर्नर खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमसे चूक हुई, तो जो चूक हुई है, जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी, जिनकी जिम्मेदारी थी, इनके खास हैं अजीत डोभाल जी, सीधे सीधे उनसे पूछा जाए ना सवाल कि आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ सो रहे थे, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी उसके बाद इतना बड़ा हमला हो गया?
आपके जो चुनावी पर्चे हैं उसमें चौकीदार का जिक्र हुआ है, असली और नकली कौन? तो असली चौकीदार कौन है और नकली चौकीदार कौन है?
देखिए, जो सीमाओं की चौकसी हमने की है इतने सालों तक, तो हम हैं चौकीदार। अगर दी वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो राफेल की फाइल चोरी होगी, नीरव मोदी भाग गया, कितने भाग गए, तो वो किस चीज के चौकीदार है?
ये थे तेज बहादुर यादव, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। और अब बात आज के शाम के कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल की।
बीबीसी इंडिया बोल।
चुनावी मैदानों में सितारों की भरमार, जीत की गारंटी देने वाले कलाकारों पर लगते रहे हैं क्षेत्र और वोटरों की उपेक्षा के आरोप, फिर भी राजनीतिक दल क्यों लगाते हैं ग्लैमर पर दाव? इंडिया बोल में होगी पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 27 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और दिनेश तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। बताएं दिनेश।
जी इकबाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से लगातार दूसरी बार नामांकन करने की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर तस्वीर के साथ छपी है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी इस आरोप की आंतरिक जाँच के लिए गठित 3 जजों की समिति के समक्ष कल पेश हुई। शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली इस समिति ने चैम्बर में पहली बैठक की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार कानून के तहत जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों की सूची जारी करनी होगी। साथ ही ये भी कहा है कि RBI को बैंकों की सालाना ऑडिट रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित कदम बताया है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि नोटबंदी से घरों की कीमतों में कमी हुई, लेकिन कांग्रेस के जो नज़दीकी लोग थे जिन्होंने इस सेक्टर में पैसा लगाया था वो बर्बाद हो गए और इसी की तकलीफ कांग्रेस को है।
बहुत शुक्रिया दिनेश आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात विवेचना की। भारतीय वायुसेना के निर्माण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह की रही है उतनी शायद किसी की नहीं। वर्ष 2002 में उन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स के पद से सम्मानित किया गया था। वो इस पद पर बैठने वाले पहले और आखिरी वायु सैनिक थे। मार्शल अर्जन सिंह की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों पर नजर दौड़ा रहे हैं रिहान फजल।
स्थान रक्षा मंत्रालय का कार्यालय, कमरा नंबर 108, साउथ ब्लॉक, दिन 1 सितंबर 1965, समय दोपहर 4 बजे। रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान, एयर मार्शल अर्जन सिंह और रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव SC सरीन, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कुमार मंगलम के साथ गहन मंत्रणा में व्यस्त थे। मुद्दा था छम सेक्टर में उस दिन सुबह हुआ पाकिस्तानी टैंकों और तोपों का जबरदस्त हमला, जिसने भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को अचरज में डाल दिया था। बैठक शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि थल सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने एयर मार्शल अर्जन सिंह के साथ कुछ देर दबे शब्दों में बात की और रक्षा मंत्री चव्हाण की तरफ देखकर कहा कि उन्हें छम सेक्टर में वायुसेना के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। वायुसेना के जाने माने इतिहासकार पुष्पिंदर सिंह याद करते हैं।
जब छम में शुरू हुई लड़ाई 1 सितंबर में और पाकिस्तान आर्मर काफ़ी आ गया था आगे और काफ़ी खतरा था इंडियन आर्मी को, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो चौहान ने बुलाया अर्जुन सिंह को, थिंग्स आर लुकिंग वेरी ग्रिम, व्हाट कैन यू डू? ही सेड, सर गिव मी द गो अहेड एंड इन 45 मिनट्स वी विल बी एयरबॉर्न फ्रॉम पठानकोट। तो उन्होंने कहा गो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ही हैड पीपल रेडी, ही हैड फाइटर स्क्वाड्रन्स रेडी। अंधेरा हो रहा था, तो बिटवीन 4:30 व्हेन द ऑर्डर्स वर गिवन गो और जब फर्स्ट एयरक्राफ्ट फॉर एयरबॉर्न वाज 45 मिनट्स, फर्स्ट फॉर्मेशन वर टेकिंग ऑफ फ्रॉम पठानकोट टू अटैक एनिमी आर्मर छम में।
अर्जन सिंह ने सबसे अधिक नाम कमाया 1944 की बर्मा की लड़ाई में, जहां उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया।
उनकी जो कमिशनिंग हुई थी क्रैनविल से 1939 में, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, उसके बाद कोई इंडियन एयरफोर्स के प्यूपल पायलट नहीं गए थे इंग्लैंड को ट्रेनिंग के लिए। जब आए वापस इंडिया तो हमारे ज़्यादा तो इंडियन एयरफोर्स एक ही स्क्वाड्रन था नंबर वन, और उनके जहाज तब थे लाइजेंडर, तो इनकी ड्यूटी ज़्यादा थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। जब जापान का इन्वेजन हुआ बर्मा में, तो इम्फाल जो जगह है वैली, नंबर वन स्क्वाड्रन जो तब कमांड कर रहे थे अर्जन सिंह जी एज अ यंग ऑफिसर, आई मीन ही वाज हार्डली 25, दे कैन बी कॉल्ड द सेवियर्स ऑफ इम्फाल, तो उनका नाम भी रहा टाइगर्स ऑफ इम्फाल। नंबर वन स्क्वाड्रन का एम्बलम है टाइगर, DFC मिला ऑन द स्पॉट। नाउ डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इज अ वेरी ग्रेट ऑनर, मगर इनका डबल ऑनर था, क्योंकि लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो थे सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कमांड एक्चुअली फ्लू डाउन टू इम्फाल और उन्होंने DFC ऑन द फील्ड दिया स्क्वाड्रन लीडर अर्जन सिंह को।
इससे पहले अर्जन सिंह उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में वजीरिस्तान के मीरन शाह जैसे सुदूर इलाके में तैनात थे। सितंबर 1940 में उन्होंने यहां से 50 उड़ाने भरी और अगले महीने 80। अभियानों के दौरान कई बार उन पर जमीन से गोलीबारी हुई, लेकिन इन सब ने उनके जुझारूपन को तोड़ा नहीं। एयर कोमोडोर जसजीत सिंह मार्शल अर्जन सिंह की जीवनी द आइकन में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
जब अर्जन सिंह तीसरा गोता लगा रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके इंजन पर कोई गोली लगी है। उस समय विमान काफी नीचाई पर था। खैर, किसी तरह कलाबाजियां खिलाते हुए उन्होंने अपने विमान को खैसोरा नदी के पास एक सूखी जगह पर उतार लिया। क्रैश लैंडिंग के दौरान अर्जन सिंह का चेहरा विमान के इंस्ट्रूमेंट पैनल से टकराया और चेहरे पर गहरी चोट आई। लेकिन उस समय अर्जन सिंह को चिंता कुछ और थी। जैसे ही विमान ने क्रैश लैंड किया, उनका गनर गुलाम अली उतरकर दौड़ने लगा। अर्जन सिंह ने देखा कि गुलाम अली उसी पहाड़ी की तरफ भाग रहा है जहां से घात लगाकर कबीले के लोग पहले से ही गोलीबारी कर रहे थे। एक भी लम्हा गंवाए बिना अर्जन सिंह नाक से बहते खून के बावजूद तेजी से उसके पीछे भागने लगे और चारों तरफ से चल रही गोलियों के बीच 50 गज आगे दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे उल्टी दिशा में भागने के लिए कहा जहां विमान ने क्रैश लैंड किया था। हमारी अपनी सेनाएं भी इस नाटकीय घटनाक्रम को देख रही थीं। उन्होंने दोनों को बचाने के लिए कबाइलियों पर हमला बोल दिया।
दुनिया में बहुत कम वायुसेना अध्यक्ष होंगे जिन्होंने मात्र 40 साल की उम्र में ये पद संभाला हो और सिर्फ 45 साल की उम्र में रिटायर हो गए हों। अर्जन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत रिसालपुर से की थी, जो इस समय पाकिस्तान में है। पुष्पिंदर सिंह एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
मैंने काफी रिसर्च किया ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स। मुझे मौका मिला टू गो टू पाकिस्तान टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल, रिटायर्ड पीपल, और मुझे फिर पूछा उन्होंने कि वुड यू लाइक टू विजिट रिसालपुर, बिकॉज रिसालपुर इज वेयर अर्जन सिंह वाज द लास्ट स्टेशन कमांडर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। सोचो, आजकल रिसालपुर में उनकी अकेडमी है, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी, इट्स नॉट अ ऑपरेशनल बेस, इट्स फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी जैसे हमारी है हैदराबाद में। तो मैं जब जाने से पहले आई वेंट टू सी मार्शल अर्जन सिंह, मैंने कहा सर आई एम गोइंग टू रिसालपुर, ही सेड गिव देम माय रिगार्ड्स एंड आई सेड कैन आई प्रेजेंट योर पोर्ट्रेट इफ यू वांट, तो आई हैड अ नाइस फोटोग्राफ टेकन ऑफ हिम एंड ही साइंड टू से टू दी व्हाटएवर स्टेशन कमांडर एटसेट्रा ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन रिसालपुर विद माय रिगार्ड्स। सो व्हेन आई वेंट आई वाज विद द कमांडेंट, उनके साथ बैठे चाय वाय पी रहे थे एंड आई मेक दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग एंड आई एम टोल्ड आई हैवन्ट बीन आफ्टर दैट फोटोग्राफ हैंग्स इन द गैलरी ऑफ ऑनर एट द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर।
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह जब रिटायर हुए तो उन्होंने हर वायु स्टेशन पर फेयरवेल विजिट की।
वो अंबाला भी गए जहां एयर मार्शल सतीश इनामदार उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात थे।
मुझे स्टेशन कमांडर साहब ने कहा भाई आप अर्जुन साहब के एलो बन हो गया लाइजन ऑफिसर फॉर टू डेज ऑफ स्टे इन अंबाला। हमने बन गए, हाँ कह दिया। जब पहले दिन से मिलने गए हम, जब वहां के ठहरे थे अंबाला में चिनार ब्लॉक में, तो हम लोग दोनों गाड़ी के पास आए। सुबह उनको लेके जाना था स्टेशन कमांडर के पास, उनके लिए गाड़ी आई थी, मैं गाड़ी में गया था उनको लेने के लिए। हम दोनों ब्लॉक के बाहर आए, मैं गया दरवाजा खोलने उनके लिए बाईं तरफ का, तो मुझसे कहते हैं रुक जाओ वेट दरवाजा खोला तो अर्जुन सिंह साहब अंदर गाड़ी में आके बैठे। तो मैं दूसरी तरफ से जाके गाड़ी में बैठने लगा अगली सीट पे, फिर मुझसे कहा कम एट द बैक। उधर दूसरी तरफ से गए पीछे गाड़ी में जाके बैठे, बड़े चकपकाए हुए थे हम, इतने बड़े अवसर के बाद बैठना है, अंदर जाके बैठे। तो उनके नाम क्या है तुम्हारा? फ्लाइट लेफ्टिनेंट इनामदार। कौन से स्क्वाड में हो? हमने कहा टू स्क्वाड में। नैट्स? जी हाँ नैट्स। कहते एक बात याद रखना, नो मैटर हाउ सीनियर द ऑफिसर इज कॉट एंड नो मैटर हाउ जूनियर यू आर, यू विल सिट ऑन द रियर सीट अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिसर, नॉट ऑन द फ्रंट सीट। उतरे वहां पे तो जो हमारे स्टेशन कमांडर साहब थे मार्शल जनरल कमांडर जॉन, उन्होंने देखा मुझको पीछे से निकलते हुए गाड़ी में से। मुझसे कहते हैं कि तुमने क्या, तुमने पीछे बैठ के आए? जी हाँ। वाई मार्शल टोल में अब मुझे ऐसा लगा कि हमारे स्टेशन कमांडर साहब को ये पता नहीं था कि क्या होता है।
2002 में भारत सरकार ने एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को मार्शल ऑफ द एयरफोर्स नियुक्त किया। मार्शल का वही स्थान होता है जो सेना में फील्ड मार्शल का होता है। मैंने एयर वाइस मार्शल कपिल काक से पूछा कि जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा लगा?
देखिए पहला इमीडिएट रिएक्शन था कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत डिले हुआ था इसका। उससे पहले करियाप्पा साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया था, वैसे ही कुछ देर बाद जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। अगर आप एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह का प्रोफेशनल करियर रिकॉर्ड देखें, किसी से कम नहीं था, और अगर वो दिखाते थे अपने काम से एक काबिलियत डेमोन्स्ट्रेट करते, वो एक महान पहला दर्जे के लड़ाकू विमान के पायलट थे, और वो दिखाते थे, ये नहीं कहते तुम करके दिखाओ, पहले वो करते थे दिखाते थे और उसके बाद जो उनके जूनियर्स थे वो सबक सीखते थे, इसीलिए वो भारतीय वायुसेना में काफी लोकप्रिय रहे।
मार्शल अर्जन सिंह को रिटायरमेंट के बाद पहले स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत और फिर कीनिया में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया। वो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
तो रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बीबीसी से कहा है कि रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों से जुड़ी खुफिया चेतावनी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि को रद्द कर रहे हैं। 2013 में अमल में आया ये समझौता दुनिया भर में परंपरागत हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करता है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल इसराइली सीमा पर हुई हिंसक झड़पों में कम 60 फलस्तीनी घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक सहायता देने की अपील की है। अमेरिका ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री जॉर्ज अरेजा और एक वरिष्ठ जज पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह वेनेजुएला के भ्रष्ट अधिकारियों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सरकार के लिए कूटनीति करने वालों को निशाना बनाता रहेगा। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क का अमेरिकी फाइनेंशियल रेगुलेटर से समझौता हो गया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।